Shanti. सभी को अच्छा लग रहा है? हाँ, थक तो नहीं गए ना? हाँ, पढ़ाई में आनंद आ रहा है? माताओं ने हाथ नहीं किया? किया माताएं? हमारी उन्नति के लिए प्यारे बाबा और हमारा यज्ञ हमारे पीछे कितनी मेहनत कर रहा है। हम उसका लाभ लेकर स्वयं की उन्नति करते हैं। हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। संगम युग टोटल संपूर्ण परिवर्तन का समय। वैसे तो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर क्षण परिवर्तन होता ही रहता है। बाबा कहते हैं दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते, युग बीते और संगम के अंत पर पहुंच गए हैं। और ये समय संपूर्ण परिवर्तन का समय है और विश्व परिवर्तन के लिए, संसार परिवर्तन के लिए बाबा की योजना है। हम आत्माओं का परिवर्तन, और हम आत्माएं विशेषकर हम ब्राह्मण आत्माएं इस ड्रामा में हीरो एक्टर हम मुख्य पार्ट धारी है। तो जरूर बाबा चाहेंगे कि पहले हीरो अपना परिवर्तन करे। घर में भी हर व्यवस्था में कहते हैं ना कि भाई जो मुखिया है, मुख्य है, जिम्मेवार है, बड़े हैं, वो बदलेंगे तो बाकी सब फॉलो करेंगे। अधिकतर आत्माएं तो देख करके परिवर्तन करती हैं, खुद की हिम्मत से नहीं करती। इसलिए हम देवता घराने की आत्माएं, जो महान आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं, मुख्य पार्ट धारी है, तो शुरुआत बाबा हम बच्चों से कराते हैं। दुनिया बिगड़ गई क्योंकि हम आत्माएं बिगड़ गए। व्यक्ति से समष्टि बनती है। इसलिए बाबा हमें फिर से बनाते हैं, ठीक करते हैं और हमारे पीछे पीछे अपने आप और आत्माएं, प्रकृति, पशु पंछी जगत सब परिवर्तन होते हैं। तो हम परिवर्तन के सूत्रधार हैं, हम चेंज एजेंट हैं, हम इस आध्यात्मिक क्रांति के क्रांतिवीर हैं, हम पूरा करेंगे परिवर्तन तो और आत्माएं भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे। बाबा शुरू करते हैं कर्म परिवर्तन, हमारे व्यवहार को बदलते हैं, हमारे कर्म को ठीक करते हैं। इसलिए बाबा के ज्ञान की शक्ति से सात दिन के कोर्स से ही हम सब ने अपने कर्मों में सुधार लाया। कर्म में ब्रह्मचर्य धारण किया और बाबा कहते हैं हम सबका भी अनुभव है कि काम महाशत्रु को जीतने से अपने आप बाकी के सब विकार कमजोर हो जाते हैं। देहाभिमान बीज है सभी विकारों की उत्पत्ति का, इसलिए रोज पढ़ाई का पाठ है जो बार बार बाबा पक्का कराते हैं, आत्मभिमानी बनो। हम व्यवहार ठीक करते हैं, दुनिया में भी जो लोग सेंसिबल हैं वो व्यवहार तो सुधार लेते हैं। कर्म के बाद वाणी में परिवर्तन, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं वाणी से प्राणी की परख होती है, वाणी से इंसान की संस्कारिता की पहचान होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुख से ज्ञान रत्न निकले पत्थर नहीं। पत्थर माना समझ गए ना, अब शब्द बोलना, कड़ुवे शब्द बोलना, कटाक्ष करते हैं, व्यंग में बोलते हैं, ये कड़वे बोल है। जिससे आत्मा को चुभन होती है, कष्ट होता है। तो हमारे शब्द में शक्ति हो, सार हो, बाबा कहते हैं वरदानी बोल हो, शुभ बोल हो। ज्ञान युक्त बोल माना सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं है, पर जो कुछ बोले वो समझ पूर्वक बोले, चाहे घर में आपस में बात कर रहे हैं या अनजान व्यक्ति से बात करते हैं, हमारी वाणी में संयम चाहिए। ज्यादा बोलते हैं, बोल बोल करते हैं, ऊंचे आवाज से बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, तो भी शक्ति खर्च होती, थक जाते हैं। जो बात बाबा कहते हैं ना, दो शब्द में कह सकते हैं, उसके लिए 10 शब्द न कहे। छोटी सी बात को बना बना करके बड़ी नहीं करें। भक्ति में योगियों की अष्ट सिद्धि बताई जाती है। इसमें एक सिद्धि बताते हैं अणिमा और दूसरी महिमा, माना वो हठ योग से। अणिमा माना अति सूक्ष्म बन सकते हैं, इसलिए चमत्कार दिखाते हैं ना कि वे जेल में बंद थे तो भी बाहर आ गए, वो अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते। और महिमा माना अति विराट रूप ले लेते। हम राजयोगियों की सिद्धि कौन सी है? हमें वो स्थूल सिद्धि नहीं सीखनी है, हमारी सिद्धि है कि कम से कम शब्दों में हम उत्तम बात कह सके, बड़ी बात को छोटी कर दे। सामान्य बात को विशेष बना दे, तो ये कला हमारे में आनी चाहिए। जो आत्मा बाबा से ऊंची प्राप्ति करते हैं, गहरी प्राप्ति करते हैं, उनके शब्दों में संयम आ जाता है। कहते हैं ना, अधूरा अधूर आधा अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे बोलते हैं। घड़े में आधा पानी हो तो आवाज करेगा, भरपूर होगा तो शान। जिन्होंने बाबा से अलौकिक प्राप्तियां की हैं, उनको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हम अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं। बाबा के ज्ञान से विचार बदल गए, परंतु जब मनसा की बात करते हैं तो मन में विचार, वाइब्रेशन, भाव, भावनाएं उत्पन्न होती हैं। सब में परिवर्तन हमें करना है। हमारा भाव शुभ हो, हम कहते हैं ना कि किस भाव से आप कह रहे हो, मैं समझ रही हूं। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो सीधी बात कर रहा हूं, पर नहीं नहीं मैं समझ गई आप किस भाव से मुझे कह रहे हैं। कई बार शब्द सही होते हैं, भाव सही नहीं होते हैं। कर्म सही होते हैं पर भावना सही नहीं होती। हम किसी की बहुत खातिरी करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, कर्म अच्छा किया, पर फिर आपस में बात करते हैं कि भाई अभी इसका आदर सत्कार करो, फिर हमें इनसे बहुत काम निकलवाना है, तो भावना गलत, भावना गलत हो गई तो क्या होगा, रिजल्ट ये आता है कि अच्छे कर्म के फल स्वरूप धन साधन सुविधा अन्न सब कुछ मिलेगा, पर भावना अच्छी नहीं है इसलिए सब कुछ होते हुए भी रोग ऐसे लगे होंगे खा नहीं सकेंगे। घर में गुलाब जामुन पड़े हैं पर नौकर खाएंगे, शेठ जी नहीं खा सकते क्योंकि बीमारी है, क्योंकि भावना ठीक नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण परिवर्तन करना है, आमूल परिवर्तन करना है, रूट से चेंज करना है, ऊपरी ऊपरी टेम्पररी चेंज नहीं। बाबा कहते हैं ना ऐसी धारणा करो शक्तिशाली जो आधा कल्प कायम हो जाए। अभी पवित्र बनते हैं 21 जन्मों तक नेचुरल पवित्र रहे, अभी जो स्थिति स्वरूप हम बनाएंगे वही लेकर सतयुग में हम आएंगे। जिस स्थिति से संगम युग पूरा करेंगे उसी स्थिति से सतयुग शुरू करेंगे। इसलिए ये मौका है, बाबा बहुत सूक्ष्म मार्गदर्शन देते हैं, बाबा की मदद है, एक कदम चलो पदम गुणा मदद। दुनिया में भी एक के साथ एक फ्री मिलता है तो हम दौड़ते हैं लेने के लिए, कि भाई एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, जानते हैं सभी, लेकिन बाबा सच में एक का पदम गुणा देता है। सिर्फ बात नहीं है, कर्म का सिद्धांत तो ये है कि एक का एक है ना, जैसा कर्म वैसा फल, जितना और उतना, जैसा और वैसा। कर्म सिद्धांत तो ये है, पर ये भगवान के आने पर स्पेशल ऑफर है। कुदरत भी एक का अनेक गुना देती है। कण बीज बोते हैं, मन बीज पाते है कि नहीं? आप थोड़े बीज बोते हैं और कितना अनाज उगता है। प्रकृति में अगर इतनी देने की शक्ति है तो परमात्मा कितना देता होगा। तो ये सिर्फ खुश करने की बात नहीं है, ये सत्य है कि एक का पदम गुणा बाबा देते हैं। इतिहास में कहानियां पढ़ते हैं, राजा खुश हो गया, हजारों सोने की मोहरें दे दी। राजा खुश हो गया, 10 गांव लिख के दे दिए। एक मनुष्य राजा दे सकता है तो विश्व का मालिक क्या नहीं दे सकता है? इसलिए कभी भी हम ये न समझे कि बाबा सिर्फ बात करते हैं, सत्य कहते हैं। बाबा मार्गदर्शन देते हैं रोज मुरली के द्वारा। जो हिम्मत करते हैं उनको मदद मिलती है। जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं बाबा जिम्मेवार बनता है। जो साथी मददगार बनते हैं बाबा उसको वारिस बनाता है। ये संगम के समय का लाभ है। इसलिए क्यों नहीं हम पूरा परिवर्तन करें। बाबा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करते ही जो असत्य है, अपवित्र है, असार है, उससे वैराग्य आता है। वहां से दिल हट जाता है। जो पहले झूठा करने में, फालतू बोल बोल करने में, विषय वासनाओं में रुचि आती थी, सत्य ज्ञान समझते ही वैराग्य आ जाता है। कि अब इस जीवन में कोई अज्ञान न रहे, उस अज्ञान से उत्पन्न अंधश्रद्धा, गलत रस में विकार, व्यसन, अवगुण, कमजोरियां, ये सब अज्ञानता की पैदाइश है। गलत रस में ये इससे दिल हट जाता है, वैराग्य आता है। इसलिए ज्ञान समझने वाले के जीवन से भक्ति का बाह्याचार समाप्त हो जाता है। अपवित्रता से दिल हट जाता है। जब तक समझ नहीं, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। दुनिया में लोग दुखी हैं पर फिर भी वैराग्य नहीं है, उसी में डूबना चाहते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार शादी करते हैं, फेल होते हैं, फिर भी उसमें ही लगे रहते हैं क्योंकि वैराग्य नहीं है। एक भाई अपनी बेटी को ले आए, तीन बार शादी कराई, फेल हो गई। भाई अब बाबा का ज्ञान लो, पर नहीं, दुख से त्याग नहीं हो सकता है। समझ से वैराग्य आता है तब त्याग होता है। दुखी तो सारी दुनिया है, फिर भी योगी बनने कहां तैयार है? फिर भी योगी बनने तैयार नहीं है ना? हम बाबा के बच्चे कितनों को संदेश देते हैं पर कोई बिरला तैयार होता है। दुख से वैराग्य नहीं आता है, समझ से वैराग्य आता है। हम लड़ते रहते, झगड़ते रहते, टकराते रहते हैं, फिर भी उसी में लगे रहते हैं, न्यारे नहीं होते हैं। वैराग्य आसक्ति हट जाए, आकर्षण मिट जाए, खिंचाव ना हो, समझ में आ जाए, उसमें कोई प्राप्ति नहीं। इसलिए संस्कार परिवर्तन की जो बात है, सबसे पहले समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए कि मेरे में राइट संस्कार कौन से हैं और गलत संस्कार कौन से। भल हम सबने परिवर्तन किया है, बाबा कहते हैं मोटी मोटी रस्सियां काट दी हैं, पर सूक्ष्म धागे रहे हैं, सूक्ष्म संस्कार रहे हैं। अब हम बाबा के बच्चे, ज्ञानी तु आत्माएं, अब हम गहराई से स्वदर्शन करें कि अभी भी मुझ आत्मा में कौन से ऐसे संस्कार हैं, आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए। जो नहीं होनी चाहिए पर हैं। हम पूरे परिवर्तन तो नहीं हुए हैं, कोई ना कोई कमजोरी में अटके हैं, तब तो यहां हैं। तो दो मिनट में अपनी डायरी में लिखिए, नोट पेन लाए हैं सभी, हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं। जिनको लिखना आता है उनको नोटबुक पेन जरूर लाने, तो अपनी डायरी खोलिए और लिखिए, अभी भी मुझ ब्राह्मण आत्मा में कौन से ऐसे कड़े संस्कार हैं जो नहीं होने चाहिए। जिसको हम बदलना चाहते हैं पर पूरा बदला नहीं है, बार बार फिर कोई ना कोई कारण मिलता है, संग मिलता है, वातावरण मिलता है, तो वो संस्कार जाग जाते हैं। वो कौन से कड़े संस्कार है? अपने हाथों से लिखिए, दूसरों को दिखाना नहीं है, ये खुद के लिए लिखना है। इसलिए एक दो की डायरी में नहीं देखो, अपनी डायरी में देखो। जब तक मुझे समझ नहीं आएगी कि ये गलत है, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया कितना भी हमें समझाए, पर जब खुद को समझ में आता है कि ये गलत है, ये कलियुगी संस्कार है, ये शूद्रपना है। मुरली में बहुत सारी तुलना बाबा करते हैं कि अभी भी बंदरपना है, पतितपना है, वो कौन सा संस्कार है? बाकी तो परिवर्तन हो गया है, हम कमजोर कहां होते हैं? हमारी लीकेज कौन सी है? स्टोव में पंप मारते रहते हैं, हवा भरना चाहते हैं, पर लीकेज है तो क्या होता है? कितने भी पंप मारते हैं पर हवा भरती नहीं है, क्योंकि लीकेज है। हम भी सोचते हैं कि रोज योग करते हैं, रोज क्लास करते हैं, पर उन्नति क्यों नहीं होती है? शक्ति क्यों नहीं भरती है? चेहरे चलन पर रूहानियत क्यों नहीं आती है? क्योंकि लीकेज है। ये कड़े संस्कार लीकेज है, आत्मा में गंदगी है, घर में गंदगी है तो क्या होगा? बांस फैलेगी, बीमारी के जम्स उत्पन्न होंगे। संस्कार में गंदगी है तो विचार गंदे आएंगे, वाणी और कर्म में गलती हो जाएगी, क्योंकि संस्कार है अभी भी गंदे। तो हम देखें कौन सा कड़ा संस्कार है जो अभी तक बदला नहीं, जिसके कारण अवस्था बिगड़ती रहती है, चार्ट बिगड़ता रहता है। आज बहुत खुशी, कल मूड ऑफ, आज मुख्य बन गए, कल साधारण हो गए, आज तीव्र पुरुषार्थी, कल ठंडे संशय बुद्धि, ये क्यों होता है? क्यों अपसेट होते हैं? ये संस्कार, कड़ी आदतें जो खुद की अवस्था डाउन करते हैं, सेवा में विघ्न लाते हैं, जिन संस्कारों से हमारे घर परिवार में या हमारे कार्य क्षेत्र में जो हमारे साथी है वो दुखी होते हैं, हमसे डिस्टर्ब होते हैं, खुद साक्षी होके खुद को देखो। अगर युगलों को साथ साथ बिठाएं कि बहन भाई साहब की कमी बताएं और भाई जी बहन की बताएं, तो वो तो बता सकते हैं, हाँ? और कहते भी है कि दीदी आपको क्या पता, यहाँ तो बहुत सेंटर में सेवा करते हैं पर घर में कुछ काम नहीं करते, हाँ? भाई कहेंगे कि यहाँ तो बहुत शांत रहती है पर घर में बहुत बोलती, हाँ? एक दूसरे का कहेंगे तब तो लिखेंगे, पर खुद साक्षी होके लिखिए। मुझे महसूस होगा तो मैं परिवर्तन करूंगी ना। दूसरों को तो हम गुस्सा करके, अधिकार करके दबा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, पर बाबा के आगे हम बच्चे हैं। संगम युग में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस अलौकिक जन्म में बाबा ने किसी को अधर कुमार नहीं बनाया है, अधर कुमारी नहीं बनाया है, सबको क्या बनाया है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। इसलिए पुराने संबंध का अधिकार अभी यूज नहीं करना है, हा? नया जन्म है तो वो पुरानापन कौन सा अंदर पड़ा है वो लिखो। लिखा सबने, हाँ? लिखा कि मिल ही नहीं रहा है, हाँ? सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, सभी को अभ्यास से डिटैच होने का, न्यारा बनने का, साक्षी होने का। तो देखो बाबा को सामने रख कर देखो, कड़ा संस्कार, कि कड़ा संस्कार कौन सा है। हम कहते हैं ना, वैसे तो बहन जी मैं काफी बदल गया हूँ, बस ये एक ही संस्कार ऐसा है, एक ही आदत ऐसी है, ये एक ही कमजोरी है, वो नहीं बदल रही, पर वो एक ही फेल कर देगी, वो एक कमजोरी समय पर धोखा दे देगी। इसलिए वो अंश भी नहीं रखना है। नाव में एक ही छेद है, बाकी सारी नाव अच्छी है, चलेगा? वो एक ही छेद है बस, पर वो एक छेद नाव को ले डूबेगा। वो एक कमजोरी फेल कर देती है। और बाबा कहते हैं ना कि कमजोरी जो है वो अकेली नहीं आती, वो मित्र मंडल परिवार सहित आती। निमंत्रण देते हैं ना, मित्र मंडल परिवार सहित पधारिए। तो ये एक कमजोरी अकेली नहीं आती, वो एक दस को ले आती। इसलिए वो एक भी है तो मुझे खत्म करना है। अब मुझे आत्मा में कुछ भी गंदगी न रहे, तो वो लिखो, अंडरलाइन करके लिखो कि ये एक कड़ा संस्कार है। बाकी तो हम जानते हैं कि बाकी भी थोड़ा थोड़ा है, उसको खत्म करने के लिए ही तो पुरुषार्थी है। पर कड़ा संस्कार वो सभी अच्छी धारणाओं पर पानी फेर देता है। हम कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर उसके एक ही कमजोरी है, किए करे पर इससे पानी फिर जाता है। एक ही कमजोरी इसके कारण वो अप्रिय बन जाते हैं। वो एक कड़ा संस्कार कौन सा है वो लिखो। तो सबसे पहली बात समझ। इसलिए ये क्यों मैं कह रही हूं ढूंढो, कि हम समझ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग के बाद चाहिए रियलाइजेशन, गहरी महसूसता। महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं तो परिवर्तन होता है, होता है, चलता है। किस में कमी नहीं है, सब में है, मेरे में है तो क्या है। अपने आप अंत में ठीक हो जाएंगे, कुछ भी है ना। हम अपने आप को चलाते रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम खुद पर फोकस नहीं, खुद के प्रति हम अटेंटिव नहीं है। दूसरा, हम महसूस नहीं कर रहे हैं कि ये एक कमजोरी मुझे हीरो से जीरो बना देगी, शिखर से नीचे गिरा देगी, विशेष से साधारण बना देगी। अगर वो कमजोरी खुल जाए तो हमारा मान शान खत्म हो जाएगा। हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। ये तो बाबा का शुक्रिया है। बाबा कहते हैं ना कि बहुत ऊपर नीचाई है तुम्हारी, पर बाबा छिपा के बैठा है। बाबा का जादू काम कर रहा है, हमारी कमजोरियां छिपी हुई रहती। तो महसूस करें, एक ही है ऐसे नहीं, ये एक भी। कहते हैं ना, सीता ने एक अंगूठा ही लक्ष्मण रेखा के बाहर रखा था, पूरा पांव भी बाहर नहीं, पर लक्ष्मण रेखा के बाहर जाने से संकल्प मात्र से भी बाहर जाते हैं तो रावण खींच लेता है, रावण खींच लेता है। इसलिए जिगरी वैराग्य मुझे पूरा शुद्ध बनना है, बाहरी बाहरी नहीं, कर्म में ब्रह्मचारी हूं पर मन में गंदगी ना हो, मैं अंदर से शुद्ध हूं, माना मेरे विचार वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि स्मृति संस्कार भाव भावनाएं, मैं अंदर से शुद्ध आत्मा हूं, फिर सिर्फ बाहर से नहीं। सिर्फ बाहर से नहीं, कहते हैं ना, एक गधा था, एक खेत में फसल उगी थी, खाने जाता था तो बार बार मार पड़ती थी, सोचा बाघ का चमड़ा ओढ़ कर जाता हूं तो सब डरेंगे और हम आराम से सब कुछ खाएंगे। नेचुरली बाघ का चमड़ा देख के लोग डर गए, आराम से खाया, पर आदत कौन सी थी? हाँ तो आदत के वश आवाज करने लगा, ऊंची ऊंची करने लगा, तो सब ने पकड़ लिया कि भाई ये तो बाघ नहीं है, गधा है। प्रत्यक्ष हो गए, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हंस हैं, बाहर से कर्म से वाणी से, पर हम वृत्ति से भी हंस, संस्कार से भी हंस, होली हंस। तो अब अंतर्मुखी बनकर अपने आप से पूछो कि ये कमजोरी क्यों मैंने रखी है, क्यों रखी है? मैं न चाहूं तो ये कमजोरी कैसे रह सकती है? हम कहते हैं ना कि मैं घर में बैठा हूं जीता जागता, किसी की ताकत है घुस के आवे? हम जीते जागते बैठे हैं, ज्ञानी तो आत्मा बनकर, ये कमजोरी हमने क्यों रखी है? इससे मैं क्या पाना चाहता? गलत संस्कार आदत से मैं क्या पाना चाहता? क्या गुस्सा करके दूसरों को दबाना चाहता हूं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं? क्यों मैं गुस्सा करता हूं? क्यों मैं ईर्ष्या द्वेष करता हूं? मेरे में विशेषता नहीं है? मैं अपनी शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकता हूं जो दूसरे की ईर्ष्या करता हूं, गिराऊं और मैं आगे हो जाऊं? क्यों मैं ईर्ष्या कर रहा? क्यों मुझे मन शान की इच्छा रहती? मेरा अपना स्वमान नहीं है? मैं अंदर से खाली हूं क्या? हम अपने आप में विशेष हैं ही, क्यों हमें चाहिए? मुझे देहधारी का आकर्षण होता है, क्यों? क्यों? मुझे कौन मिला है ये महसूस नहीं है? 63 जन्मों का अनुभव सामने नहीं है? मुझे दैहिक आकर्षण क्यों होते हैं? खुद पूछो, ये कमजोरी मैंने क्यों रखी? गलत चीज से सही प्राप्ति हो नहीं सकती, ये सदा याद रखना है। कमजोरी के द्वारा सही काम कैसे हो सकता? कोई एक बार दो बार आपसे दब जाएगा, पर फिर डबल जोर से रिएक्ट करेगा। संगम युग में हम आए किस लिए? सही तरीके से सही प्राप्ति करने, वरना दुनिया में थे ना? झूठ द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते थे, हम क्यों संगम युग में आए? वही वृत्ति प्रवृत्ति यहां करनी थी तो हमने परिवर्तन क्या किया? इसलिए पूछो, क्यों ये कमजोरी है और अब मुझे खत्म करना है? और तीसरा, अब इस कमजोरी को मिटाने के लिए मुझे अपने में कौन सा गुण भरना है, कौन सी शक्ति भरनी? हम अपने में इतना शांति प्रेम भरें, हम किसी से चिढ़े नहीं, गुस्सा आए नहीं, हम इतना शुद्ध बने, रोज पवित्रता के सागर को याद करें, अपने पवित्र स्वरूप को याद करें कि विकार आवे नहीं। हम झूठ धोखाधड़ी बनावट मिलावट क्यों करते हैं? संतुष्टता, संतुष्टता, सादा सरल सात्विक जीवन मुझे बनाना है। अपने आप ये चीजें खत्म होने लगती हैं। तो आज हम दिल से, जिगरी वैराग्य से, जो बचा खुचा कड़ा संस्कार है वो बाबा के आगे स्वाहा करेंगे। आज बाबा सौगात देंगे, याद सौगात। चीजें तो हरेक के पास बहुत है, पर ये याद सौगात है, बाबा याद रहता है। तो हम रिटर्न में क्या देंगे? धन से सहयोगी तो हम बनेंगे ही, क्योंकि यज्ञ हमारा है, यज्ञ हमारा है, हमारे पढ़ने लिखने के लिए प्रबंध करता है। पर आज मुझे बाबा को ये कमजोरी अर्पण करनी है। आज शिव बाबा पर ये अक धतूरा चढ़ा देना है, ये जहर दे देना है। तो चलो हम बाबा से बात करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और मन ही मन स्वाहा करेंगे। वतन में बाप दादा के पास पहुंच जाए। प्यारे बाबा, आज इस कड़े संस्कार को मैं दिल से स्वाहा करती हूँ। मैं जानती हूँ आपने ब्रह्मा मुख से सद्ज्ञान देकर नया जन्म दिया है। ये मेरा मरजीवा जन्म है। अलौकिक जन्म है। कलयुगी संस्कारों से मरकर संगम युगी पवित्र योगी संस्कारों से मुझे जीना है। बाबा, मुझे इस कमजोरी से अब घृणा आ रही है। मुझे नफरत हो रही है। इस ब्राह्मण जीवन में ये कलयुगी कमजोरी शोभा नहीं देती है। ये कमजोरी मुझे फेल कर सकती है। धोखा दे सकती है। अब ये मुझे नहीं चाहिए। ये कलियुगी संस्कार विकारी कड़े संस्कार रावण की अमानत है। मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ, अब ये रावण की प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, मुझे बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों का वारिस बनना है। बस बाबा मैं आपके आगे इस कमजोरी को समर्पण कर देते हैं। अब ये मेरी नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। मेरा अपना असली स्वरूप सत्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। मैं आदि अनादि परम पवित्र आत्मा हूँ। आज इस कमजोरी को अंश वंश से बीज से जड़ों से खत्म करना, पवित्र आत्मा मैं आपको याद करती हूँ। और आप मेरे साथ हो जाते हैं, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आपसे कंबाइंड हूँ। मेरे सदा पावन पतित पावन पवित्रता के सागर बाबा मुझे भी भी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मैं आपका सच्चा पक्का बच्चा हूं। अब मुझे रावण का माध्यम नहीं बनना है। मुझे आपका माध्यम बनना है। मैं निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूं आपकी शांति, आपकी पवित्रता, आपका सत्य ज्ञान, रूहानी प्यार, अतिन्द्रियानंद, सदा मुझ आत्मा के द्वारा विश्व की आत्माओं को पहुंचता रहे। मैं दृढ़ निश्चयी हूं मुझे अपना सुधार उद्धार करना है। विजयी बनना है। सफलता का सितारा बनना है। मैं शांत हूँ। पवित्र हूँ। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सब गुणों की किरणें बाबा सदा दे रहे हैं। Shanti.